ओम शांति। हम रजनीबेन का वेलकम करेंगे। आप में से कौन है जो रजनीबेन को नहीं जानते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। वो काफी लोग नहीं जानते रजनीबेन, ये तो लॉटरी है। नहीं, यूके कैनेडा सब जगह के है, अमेरिका। अच्छा, ओके। रजनीबेन मोर देन 45 इयर्स से ज्ञान में है और ज्ञान उसने लिया था दिल्ली रजौरी गार्डन में, और वहां रुक्मणी दादी और सुदेश दीदी जो लंदन और जर्मनी में है तो उसके पास से भी उसने ट्रेनिंग ली है और बहुत सारे देशों में सेवा भेज दी है। 79 में लंदन में आई थी, काफी समय हमारे साथ रही थी, तो बहुत अच्छा हम लोगों को अनुभव था। एक बात मुझे रजनीबेन की जो बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत ओपनली शेयर करती है, और दूसरा हंसते हंसते इतनी लाइटली शेयर करती है तो हमको भी अंदर जैसे कि झंक जाता है जो भी शेयर करती है। और एक खूबी उनकी ये भी मैंने ऑब्जर्व की है कि जब भी टीचर्स के साथ दादी बैठती थी और उसके बाद कभी भी रजनीबेन को पूछो कि दादी ने आज क्या कहा, तो सारा इतना अच्छे ढंग से शेयर करेंगी, तो उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है ना, वो बहुत अच्छी है, तो वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो 79 में वो लंदन आई थी और 79 होंगी, क्योंकि मैं 89 में होंगी। रजनीबेन में थी तब आई थी आप?
79 नहीं 79 नहीं,
तो मैं यहाँ मिली होंगी, तो नहीं मैं वहाँ यहाँ मिली होंगी। तो 79 में लंदन, 80 में न्यूयॉर्क, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, और 83 में फिलीपींस और जापान में। तो अभी वहां ही फिलीपींस और जापान में वर्तमान समय सेवाएं दे रही है, और साथ में नेबरिंग कंट्रीज उसमें जो हांगकांग, ताइवान, ये सब है। और दादी की भी बहुत पालना ली है, सब दादियों की, दादी जानकी की भी बहुत पालना ली है, और साकार में बाबा और मम्मा को भी देखा है, तो काफी उनका अनुभव है, तो वो भी थोड़ा सा हमको सुनाएंगे। परंतु आज का जो टॉपिक रखा है वो है खुशनुमा चेहरा द्वारा सेवा, और बाबा की इस साल की मुरली में था ना खुश रहना का, लास्ट टाइम का भी होमवर्क कंटिन्यू, तो उस टॉपिक पर वो सुनाएंगे। और उसके बाद कईयों को कुछ और भी प्रश्न था ये टॉपिक के अलावा, तो पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति।
थैंक यू। ओम शांति। तो आप में से कितने हैं जो यूके के हैं? अच्छा, यूके के ज्यादा हैं। यूएस के? अच्छा, यूएस के। और बाकी कनाडा के नहीं है? हैं तो बहुत आए हुए वहां पर। हाँ, और बाकी कौन से देश के हैं? अफ्रीका? हाँ, अफ्रीका, मॉरिशस, ओके, हाँ, बैरन, ओके। तो अच्छा है इंटरनेशनल क्लास, क्योंकि हम लोग तो नीचे जाते हैं ना हिंदी क्लास कराने, हमेशा 10,000 लोग, 12,000 लोग, 8,000 लोग, वो हिंदी क्लास में इतने होते हैं ना वहाँ, तो क्योंकि 20,000 होंगे, 10,000 इधर घूम भी रहे होंगे, तो 10,000 वहाँ बैठे होंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि आप कितने भाग्यवान हैं, बाबा की तपस्वी भूमि पांडव भवन में बैठे हैं, और वो भी यहाँ पर मेडिटेशन हॉल, जहाँ पर बाप दादा आते थे यहाँ पर संदी पर। तो जब मैं यहाँ बैठी तो मुझे बाबा की याद आई, अव्यक्त बाप दादा की, क्योंकि मैं और दादी जानकी और निर्मला दीदी हम लोग श्रीलंका से टूर करके आए थे, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। तो दादी जानकी ने कहा तुम बाबा को भाकी पहनो, तो हम लोगों ने बाबा को यहाँ बैठे, बाबा आए थे इतना नजदीक, भाकी पहनी थी। मुझे वो याद आया ये सीन। और दूसरा सीन याद आया, दीदी यहाँ बैठती थी, जितने भी विदेश के बाबा को मिल चुके थे, फिर दादी जानकी ने कहा आप लोग जाओ और दीदी से दृष्टि लेकर के फिर जाओ अपने देश में। तो दीदी यहाँ बैठ के हमको दृष्टि देती थी, और उसकी दृष्टि बहुत शार्प थी, बहुत अंदर जाने वाली दृष्टि थी, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन वाली दृष्टि थी। तो बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा खजाना दिया है। कौन सा खजाना? खुशी का खजाना। तो एक दूसरे के जो आप नजदीक बैठे हैं ना, तो आप एक दूसरे को देखकर खुश होकर के बोलो मैं आपको मिलकर बहुत खुश हूं। बोलो। हाँ। मिलकर, क्योंकि जब हमने अभी फिलीपींस में ना हमने सेंटर वासियों की रिट्रीट कराई ना, तो उसमें एक एक्टिविटी ये थी कि जितने भी हम लोग 19 लोग थे या 20 लोग थे कि आप एक दूसरे के पास जाके हाथ में हाथ डाल के बोलो आई एम ग्लैड टू बी हेयर एंड आई एम ग्लैड टू सी यू। तो हर एक को करना है, खाली एक दूसरे के नहीं, पीछे वाले जो बैठे उनको भी करो एक दूसरे के। हाँ नहीं दूसरे वो पीछे वाले एक दूसरे को पहले करके खुश हैं हम एक दूसरे को देख के। क्यों? हाँ क्योंकि 5000 वर्ष के बाद हम सब इस परिवार में मिले हैं। और नहीं किया, तीन भाइयों ने नहीं किया, पीछे भी करो ना, हम खुश हैं आपको मिलके। हाँ खुश। हाँ हाँ हम लोगों ने तो बहुत खुशी की गेम्स की थी। एक ये किया था कि हर एक को हाथ में हाथ डाल के को मैं तो बहुत खुश हूँ आपको मिलके। दूसरा था फूल लेके आओ, तो हमने फूल बहुत रखे थे, अपना फूल लाओ और उसको कहो कि मैं आपके अंदर तीन खुशी की बातें देख रही हूँ। कौन कौन सी? तीन, तीन निकालनी थी हमको। जो बाबा ने हमको टाइटल दिए हैं ना, वो टाइटल हमको उसके अंदर देखने थे और कहना था मैं ये तीन बातें आप में देख करके, जो बाबा के आपको मिले हुए वरदान हैं उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। तीन ना, जैसे मैंने किसी के अंदर देखा बाबा के आपको जो टाइटल मिला है कि आप अथक सेवाधारी हैं, तो ये क्वालिटी आपको की देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप वर्तमान समय आपकी स्थिति अचल अडोल है ये देख करके खुशी होती है। और आप आत्मा हमेशा ध्यान रखते हैं मेरा बोल मीठा निकले, इसलिए हमको खुशी होती है। तो हम लोग 20 थे तो तीन तीन ढूंढने थे, तीन गुण उसके अंदर ढूंढने थे, तब कहना था मुझे बहुत खुशी होती है आपके अंदर ये गुण देख करके। ये एक एक्सरसाइज की थी। फिर तीसरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, दो लोग जो है वो बनते थे, जैसे होता है ना एक पंछी होता है और आकर के वो क्या कहते हैं हिंदी में बास्केट, हाँ बास्केट पर बैठता है ना बास्केट, तो हमको बास्केट बनानी थी। तो एक पंछी बाहर, तो एक बहन बाहर और दो, तो वो पंछी कहता है मुझे यहाँ बैठना है इस घर में आके। तो तुमको घर में बैठना है तो अच्छा बाबा की सबसे बढ़िया पॉइंट आज की मुरली की सुनाओ, तब आप इसमें बैठ सकते हो। तो ऐसे ही एक्सरसाइज थी। फिर घूमो घूमो घंटी बजती थी, घूमो दूसरी बास्केट वो में जाता है, तो सब घूम करके अपनी एक बास्केट बनाते हैं हाथ में हाथ मिला के। फिर दूसरा पंछी आता है मुझे इस बास्केट में बिठाओ, अच्छा तुमको बैठना है, तुम मम्मा बाबा की कोई एक विशेषता सुनाओ, तब आप यहाँ बैठ सकते हैं। कितना अच्छा लगता है, नहीं मुरली भी रिवाइज हो रही है। तीसरा बहुत अच्छा था कि आपको बाबा के प्यार का एक गीत का एक लाइन सुनानी है, बस एक लाइन प्यार वाली हो, उसमें लव शब्द आना चाहिए प्यार, तो वो गीत सुनाना है एक लाइन का, तब आप इस बास्केट में इस घर में विराजमान हो सकते हो। तो वो फिर सोचते थे कौन सा है। फिर चौथा, हाँ चौथा था कि आप बाबा की मुरली से एक पोयम बनाओ, उस पोयम में एक लाइन बहुत सुंदर पोयम की तरह गाओ, है ना, एक है गीत गाना, एक है पोयम गाना, एक है मम्मा बाबा की विशेषता, बहुत मजे से करते थे। तो वो हंसते भी हैं, खुश भी होते हैं, और नया नया घर बनाते थे, नए नए वो आते थे ना पंछी, मतलब बहने, तो तीन लोग होते हैं, दो हाथ और एक जो खड़ा है, वो कहते हैं कैन आई सिट इन दिस बास्केट, आई एम ए टेनेंट। वो कहते हैं अच्छा तुमको ये करना है पहले, फिर आप किराया देना होता है ना। तो इस प्रकार से बाबा की कई बातों से हम सीख सकते हैं खुश रहने के लिए। लेकिन खुशी तब आती है तीन बातों से। एक है जैसे ब्रह्मा बाबा, एक बार दादी जानकी कहती ना बार बार क्लास में कि बाबा को हमने देखा था दिन में वो नाच रहा था, याद है ये वाली पॉइंट देती है हिस्ट्री हॉल में। तो कहती मैंने बाबा को कहा बाबा आप क्यों डांस कर रहे हो, बाबा ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, सच तो बिठो नाच, मतलब आपके दिल में कोई भी प्रकार की एजेंडा नहीं है। एजेंडा समझते हैं, किसी के प्रति कोई भी खराब फीलिंग नहीं है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। सारी हमारी जीवन किस आधार से चल रही है? कर्म का हिसाब किताब। खुशी तो ऐसे भी हो जाएगी, अच्छी टोली खा लो, अच्छा ब्रह्म भोजन कर लो, अच्छी चेयर मिल गई, नहीं। लेकिन जो अंदर की खुशी की बात हम कर रहे हैं ना, ये वाली आंतरिक खुशी, क्योंकि ये आंतरिक खुशी को कमाना पड़ता है और जमा करना पड़ता है। कमाना कैसे, जमा कैसे करना है? कमाते हैं सत्यता से, ऑनेस्टी, ईमानदारी से। और बाबा ने जैसे कहा कि जैसे हम योग लगाते हैं तो हमको पता चल जाता है योग में, जो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, विचार, कि वो बाबा से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो यदि नहीं कर रहे हैं तो जहां पर मेरा अटेंशन चला गया, कोई इंसान या कोई भी वैभव या कोई भी वस्तु, है ना, यदि हमारा आकर्षण है उस तरफ, तो बाबा से निकल वहां चला गया ना आकर्षण, तो खुशी नहीं होगी, है ना। खुशी होती है जमा करने से। जैसे पैसा जमा करते हैं तो खुशी होती है कि मन में सिक्योरिटी रहती है कि पड़ा है, हमको चिंता नहीं लगेगी। तो ये हमको जमा करनी पड़ती है खुशी। अच्छा, खुशी जमा होती है तब जब हम मीठे बोल बोलते हैं, उससे भी खुशी होती है ना। कोई हमको मीठा बोल दे तो खुशी होती है, थोड़ी कोई इंसल्ट कर दे तो दुख होता है। चाहे मैंने देखा कि मुंह से इंसल्ट ना करे लेकिन ऐसे करके चला जाए तो भी खुशी नहीं होती। हाँ, मतलब ये कितनी सूक्ष्म हमारे संस्कार हैं जो हमारी खुशी को गुम कर देते हैं। एक बहन थी ना जापान में, तो वो बेचारी काम करती थी हॉस्पिटल में, तो उसको पहले पता ही नहीं चला कि मेरा ये संस्कार है इग्नोर करने का है? तो वो हर ब्राह्मण को ऐसे करके चली जाती थी, कुछ पूछो। तो एक दिन वो हॉस्पिटल में काम करती थी कुछ साल पहले, तो एक पेशेंट ने कहा कि हमको ये चम्मच लाके दो, स्पून लाके दो, तो उसने ऐसे कर दिया। उसको पता ही नहीं चला कि ये इग्नोर का संस्कार है, आदत है। तो उसने जैसे ऐसे किया, पेशेंट तो उठ के उसके गले को घोर दिया। हाँ, तो वो उस दिन बच गई हैं। तो आई वापस तो हमको बताने की थी, रजनी बहन आज तो मैं बच के आ गई। मैंने कहा कैसे? कहा हाँ, ब्राह्मण थी, स्टूडेंट बाबा की बच्ची थी, कितनी मेरे को पता ही नहीं था, मैं ऐसे कर दिया कि मैं क्यों लाऊं चम्मच। भाई तुम ड्यूटी पर है तो देना फर्ज है ना, एक ड्यूटी के हिसाब से, ब्राह्मण के हिसाब से हम सहयोग देते हैं। लौकिक दुनिया आपको पैसा देती है तो ड्यूटी है। तो कहती है वो, मैंने तो रियलाइज नहीं किया। मैंने कहा तूने तो कितनी बार किया हम सबके साथ, चलो हम ब्राह्मण एक दूसरे को सहन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लौकिक लोग तो। हाँ, कहती मेरी तो आंखें खुल गई आज। मैंने कहा ये तो तुम्हारा अवगुण कितने सालों से था, किसी को हिम्मत ही नहीं थी तुमको बताने की, क्योंकि वो बताएंगे तो ऐसे कर देगी। लेकिन जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हमको एहसास होता है ना। तो उसको जब अपना अवगुण पता चला, अवगुण क्या, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी ना, तो वो कहती अभी तो मैं आंखें खुल गई हैं, तब से उसका पुरुषार्थ अच्छा हो गया। हाँ, अभी नहीं करती है वो ऐसे। हाँ, पहले हम मुरली मांगते थे, मुरली कहाँ रखे, चली जाती थी बाबा के कमरे, योग कर रहे हैं, फिर मुरली कहाँ रखी वो तो बताओ। मतलब कि आत्मा उस अंधकार में थी, है ना, ईगो। कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो अवेकनिंग है ना, जागृत अवस्था नहीं है, जिसमें हमको अपने अवगुण का पता चले, तो खुशी कैसे रहेगी? तो वो ना, मैं ये बता रही हूँ थोड़ा कर्मों के हिसाब किताब से, कि हमारी खुशी गायब क्यों होती है। तो छोटी सी बात, हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, चलो हम उसकी बात सुन लें, कर नहीं सकते, सुन तो लें, है ना, हमने आपकी बात सुनी, हम ध्यान देंगे, इतना तो बोल सकते हैं, नहीं, और हम इग्नोर कर देते हैं और फिर जाकर कर योग करने बैठ जाते हैं, कहाँ योग लगेगा, खुशी कहाँ होगी। आप 10 घंटे योग लगा लो लेकिन एक आत्मा को तुमने दुख दे दिया, है, इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट है ना ये तो। तो इसलिए बाबा कहते कि ये जो गुणों से हमको खुशी होती है, गुण जो हमारे अंदर, गुण का मतलब है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एटीट्यूड ना, ये पॉजिटिव एवृत्ति, ये जो पॉजिटिव की एनर्जी है ना, इसको हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे सोलार की ऊर्जा होती है, सूर्य से बनती रहती है ना, ऐसे ही हमारे मन में ये जो विचार है, ये एक ऊर्जा है, एक एक एनर्जी है ना ये। लेकिन इसके जो प्रकंपन होते हैं, इसकी जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उसको हम योग के कहते हैं ना। यदि हम पॉजिटिव हैं तो ये योग के वाइब्रेशन फैलेंगे। और जो जैसे दादी जानकी के पास हम जाते हैं, दादी गुजार के पास जाते हैं, उनके प्रकंपन बहुत दिल को सुख देने वाले हैं, है ना। दिल करता है बैठे रहें, क्यों? क्योंकि उनके जो प्रकंपन है, ऊर्जा जो है वो फैल रही है वातावरण में और आपको रिलीज कर रही है, कुछ दुख से खुशी में ला रही है। तो उनके प्रकंपन खुशी के हैं, वो ऑर्डिनरी खुशी नहीं है उनके अंदर, वो खुशी वो बना करके इतनी बैठे। मैंने परसों भी दादी गुलजार से 3 प्रश्न किए। मैंने कहा दादी मैं तो 3 दिन से आपके साथ हूँ, सारा दिन मेरे को तो बहुत सुख मिला। कल मैंने दादी को बताया, लेकिन मैंने कहा दादी एक प्रश्न पूछना है आपसे कि ये आपके अंदर ना दादी कैसे योग रहता है सारा दिन? कहती है और काम ही नहीं है मेरे को। क्या काम है रजनी, मेरे को है कुछ काम, योग में रहना ही तो है। मैंने कहा दादी अटेंशन देते हो आप? कहती है 100%। तो मतलब मैंने कहा दादी जैसे आज आपने अटेंशन दिया? कहती हाँ अटेंशन देती हूँ। और मैंने कहा खुशी बढ़ाने के लिए क्या करते हो आप? यदि रोज मेरी खुशी बढ़ती जाए उसका अटेंशन है, वो बढ़ाने के लिए भी अटेंशन है। कि मान लो हम बाबा के बच्चे बन गए तो ऑर्डिनरी हो जाएंगे, यदि गॉडली स्टूडेंट हैं तो डिसिप्लिन आ जाता है ना लाइफ में, तो खुशी होगी। लेकिन एक तीसरा लेवल है हमारे ब्राह्मण लाइफ में, बच्चा गॉडली स्टूडेंट, तीसरा है वॉरियर, जागृत अवस्था। जैसे सिपाही होता है, सोल्जर होता है, वो ड्रेस पहन के सोता है, कभी भी कुछ हुआ इमरजेंसी में भाग के चले जाएंगे। तो हम बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे खुश हैं, लेकिन आओ सुबह सुबह उठो, अमृत वेला डिसिप्लिन में रहो। कितने लोग बाबा के बच्चे, कितने लोग जो है गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, काम डिसिप्लिन आ गया ना बीच में। बच्चे तो बहुत है, करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन गॉडली स्टूडेंट कौन है? गॉड के स्टूडेंट कौन है? थोड़े हैं जो रोज पढ़ेंगे। फिर गॉडली स्टूडेंट में भी सारा दिन आप वॉर पर है ना, वॉर चलती है ना अंदर ही अंदर, है ना, माया की वॉर, कमजोरी कमजोरी थिंकिंग, ये जो थॉट सोच आता है, और इल्यूजन, बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, ये जो सब आ रहा है हमारे अंदर, उसे हम लड़ाई करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो मेरे को यहाँ पर एक बात बतानी है आपको, देह का भान किसको कहते हैं जो हमारी खुशी को गुम कर देते हैं? मालूम है, हम ब्राह्मण तो बन जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, ब्याज लगा लेते हैं, चलो ब्राह्मण बन गए, लेकिन जो हमारे अंदर एक सोच चलता है ना, उसमें कभी कभी हम इस सोच से चला रहे होते हैं जीवन, अच्छा मैं ना बहुत अमीर घर की हूँ, समझा ये वाला, ये एक बोझ लेके चल रहे हैं हम अंदर ही अंदर। ओ मैं तो प्रिंसिपल थी स्कूल की, ज्ञान ज्ञाने से पहले, हा? अपने अंदर हम कहते हैं, पद का अभिमान लेके चल रहे हैं, या मैं तो बहुत ऊंच कुल की हूँ, है? तो ये शरीर के अभिमान की बाबा नहीं बात कर रहा है कि ये देह है इसका भान, नहीं, देह का अभिमान कौन सा, कुल का, जाति का, धन का, है ना, कुछ भी एक्यूमुलेशन है जीवन में, वैभव का, कुछ भी हो, यदि हम उस मन में उस विचार को लेकर के अपना जीवन चला रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं देह भान का बोझ। हाँ, क्योंकि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारा ब्राह्मण मीन्स हमारे कलयुग का हिसाब किताब क्लियर, खत्म, ना लेना ना देना। भगवान के बच्चे हैं ना, भी बाबा के बच्चे हैं, तो जो भी आत्माएं आपके जीवन में हैं अभी तक, हाँ चलो आपका परिवार है, 2 आत्माएं, 4 आत्माएं, 6 आत्माएं, आपकी जिम्मेवारी है उनको पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना, चलो वो तो ठीक है, जिम्मेवारी है, परंतु बोझ लेके तो नहीं चल रहे, हाँ, एक है बोझ लेके चलना मन में, वो बाबा कहते हैं देह का अभिमान। हाँ, तो हम बाबा के बच्चे हैं तो हम हल्के हो गए, और कोई कर्म का जो पिछला हिसाब किताब है उस हिसाब से हम नहीं चला रहे जीवन। क्लियर हुआ ये बात? क्योंकि देह का भान हमको बोझिल कर देता है कि मैं स्कूल टीचर थी, यहाँ तो कोई पूछता नहीं, पहले तो मेरे को सब सल्यूट करते थे स्कूल के बच्चे भी, नहीं होता है ना, ये थॉट आ जाता है तो वो आपकी खुशी को, हाँ, क्योंकि अभिमान आ गया ना सूक्ष्म में, वो देह का अभिमान बाबा जिसको कहते हैं ना देह का भान, तो ये देह का नहीं, ये इसको तो देना है, खाना भी देना है, रेस्ट भी देना है, सब कुछ देखना है, नहीं तो वैल्यूएबल बॉडी है। लेकिन देह का जो भान बाबा बता रहे हैं ना, वो है सूक्ष्म में हमारे मन में कोई ना कोई प्रकार की जो पिछले इस ब्राह्मण जीवन से पहले वाला जो जीवन हम निभाते थे ना, चाहे हम अमीर थे, चाहे गरीब थे, चाहे कुल बड़ा था, चाहे कुछ भी था, है ना, तो उस भान से हम अपना जीवन चलाते हैं, तो वो बोझ जो है हमारी खुशी को खत्म कर, एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में हमको ये बोझ नहीं लेना है, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान की बच्ची हूँ, बस यहाँ से शुरू करनी अपनी ब्राह्मण जीवन, नहीं, ब्राह्मण जीवन यहीं से शुरू होती है ना, भगवान के बच्चे हैं तो खुशी तब रहेगी हमारे जीवन में जब ये पास्ट का बोझ खत्म होगा, नहीं तो चेहरे से पता चल जाता है ना, नहीं तो दादी बताती ना, एक बार अहमदाबाद में एक भाई मिला दादी को, तो टोली ले रहा था, दादी ने कहा तेरा चेहरा खुश क्यों नहीं है, कहता जी मैं तो सारी रात जागा हूँ दादी, मैं तो ड्यूटी पर था, सेवा पर था, वॉचमैन की ड्यूटी थी। अच्छा तूने सेवा की, उसकी चमक कहाँ है यहाँ चमक कमाई कहाँ है, खुशी कहाँ है, चेहरा तो बहुत उदास है, जाओ बाबा के कमरे में बैठो, अंदर झांको, कौन सी इच्छा आ गई आपके अंदर जिस इच्छा ने आपकी खुशी को गायब कर दिया। तो इच्छा भी खुशी को गायब कर देती है, कोई भी इच्छा। चलो ब्राह्मण जीवन में कौन सी इच्छाएं आती हैं, पवित्र इच्छा तो अच्छी है, हमको आगे बढ़ना है, तपस्या करनी है, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है ना, अंदर के अपने फीलिंग्स अच्छी बनानी है, ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो होनी चाहिए इच्छा। लेकिन जो दूसरे प्रकार की इच्छा आ जाती है, कौन सी इच्छा ब्राह्मणों को आती है मालूम है, नामांशान सुख सुविधा ना, शुरू शुरू में हमारा जीवन में कंट्रास्ट होता है परिवर्तन का, जब हम शूद्र थे और ब्राह्मण बने तो साफ पता चल रहा होता है कि हम चेंज हो गए हैं, और कुछ साल के बाद परिवर्तन नजर ही नहीं आता है, क्यों, क्योंकि एटीट्यूड जो वृत्ति है हमारी वो त्याग तपस्या सेवा वाली नहीं रहती, और कहाँ चली जाती है, बड़ी सूक्ष्म है ना, सुख सुविधा, हाँ माया तो कहीं से भी आएगी है ना, तो वो त्याग तपस्या छूट जाती है और सुख सुविधा नाम शान में चली जाती है, तो सूक्ष्म तो होगी ना। तो इसलिए हम लोगों को ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बहुत जरूरी है सामने रखना, क्योंकि उसके जीवन का रास्ता कौन सा था, त्याग, त्याग, त्याग से ही बाबा ने आगे बढ़ाया ना ये संस्था को, नहीं, त्याग था उसके जीवन में। तो ब्रह्मा बाबा जो है, देखो दूसरा नहीं तो क्या हो जाता है ब्राह्मण जीवन में, एक हम यदि वृत्ति त्याग वृत्ति नहीं रहेगी तो खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि देखो क्या होता है, मन को एक आदत पड़ी हुई है मालूम है, कौन सी, सपोर्ट लेने की, है ना, किसी ने आपकी महिमा कर दी तो आप बहुत खुश हो गए, है ना, खुशी आ गई, महिमा किसी ने की, ओ किसी ने कहा आप तो बहुत, आपके अंदर ये गुण है, आपने ये किया अच्छा, ये किया, मन सोचने लगता ओ मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, तो खुशी आई तो उसका मतलब हमने सपोर्ट कहाँ से लिया, हाँ महिमा से ले लिया, तो फिर कल को वही व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर दे तो वो जो आपकी आधार था खुशी का वो, हाँ, फ्लक्चुएट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए नाम, पोजीशन, शान,
मतलब जो भी हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत अटेनमेंट्स हैं, सिद्धियां हैं, उसके आधार से भी हम यदि खुशी पैदा करते रहेंगे तो वो भी कभी जा सकती है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि जब से ब्राह्मण बने हैं आपके जीवन में सिद्धियां तो शुरू हो गई आनी। ब्रह्मा बाबा को भी तो सिद्धियां थी ना कितनी सारी। तो हम ब्राह्मण बने हैं, देखो आप किसी को अच्छा समझा सकते हो, मान लो टीचर बन गए। आप सेवा अच्छी कर सकते हो, सेवाधारी बन गए। आज पहले हम कम्युनिटी में जाकर थोड़ी भाषण करते थे, तो आज हम 1000 लोगों के सामने और दूसरे धर्म के लोगों के सामने बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं, कम्युनिटी लीडर बन गए, है ना, सोशल सेवाधारी बन गए, समाज सेवक बन गए। कितने सारे अटेनमेंट्स आती जा रही हैं, एबिलिटीज आती जा रही हैं, सिद्धियां तो हैं ना ब्राह्मण बनने में, टीचर बन जाते हैं, है? बाबा ऊंचा उठा देते हैं ना हमारे जीवन की वैल्यू, तो बाबा ने बढ़ा दी। लेकिन जो हमको प्राप्ति हुई, वो जो हम सेवा करते हैं, लोगों ने महिमा की, कुछ दिया, हम उससे सुख लेने लग जाते हैं, तो खुशी गायब हो सकती है। क्योंकि कल को वही आधार चला गया तो खुशी खत्म। इसलिए जो ये रास्ता है ना ब्राह्मण जीवन का, वो कौन सा रास्ता है? त्याग का। कि आपको जो भी मिल रहा है उसको भी, हाँ, ये एटीट्यूड हो, एटीट्यूड ये हो। वर्तमान समय कई ब्राह्मण इमेज के आधार से रहते हैं, वो मैं तो फलाने के पास काम करता हूँ, है ना, हाँ हाँ, कहेंगे मैं तो फलाने दादी के साथ, वो फलाने बड़े भाई के साथ, वो माइंड अभी तक सपोर्ट ले रहा है, अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ है। तो ब्राह्मण जीवन में हमको ये सूक्ष्म जो होते हैं ना सहारे, है ना, ये भी कभी जा सकते हैं और खुशी जा सकती है। इसलिए खुश रहने के लिए बाबा कहते हैं अपना घोर तो नशा चढ़े, अपनी इंग्रेडिएंट्स हमको बनानी है। तो मान लो आप ब्राह्मण हैं अभी, ठीक है, तो आप अपने जीवन में दो बातें देखो, तीन एक्चुअली, तीन। एक है कि मेरे जीवन में कौन सी गुण है, क्वालिटी है, विशेषता है, जिसके आधार से मैं चल रही हूं। बाबा तो दे रहा है लेकिन आप उस चीज को अपना बना रहे हैं ना यूज करके, है ना। मान लो आपके जीवन की विशेषता वैल्यू कौन सी है, मीठा बोलना, मान लो है, तो आप मीठा बोलना एक गुण है, ये आपकी वैल्यू हो गई, है ना। मान लो आप अथक सेवाधारी हैं, है ना, सेवा करते हैं, थकते नहीं है, अथक हैं, टायरलेस, तो वो आपकी विशेषता हो गई। समझ रहे हैं? तो ये आपकी वैल्यू है। तो इन इन गुणों को बढ़ाना है हमको, गुणों को, ना कि वो कोई छोटी छोटी सी गुण, हाँ, कोई देखता है हमारा वो महिमा कर देता है और हम उस महिमा के पीछे अपना सुख ले रहे हैं। नहीं, हमको वो भी त्याग करके अपना त्याग का गुण बढ़ाना है। ये है खुशी का साधन। यहाँ खुशी का साधन दुनिया में तो चीजें इकट्ठी करना है, ब्रांडेड चीजें, है ना, मेरे पास ये ब्रांडेड कार है, ब्रांडेड ये है, वो बड़े नशे से बोलेंगे, घर है, बार है ना। हम, आप लोग सब फॉरेन में रहते करते हैं ना, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, नहीं, अच्छा अभी इंडिया में आओ तो सब सुख सुविधा तो नहीं मिलेगा। तो यदि आपके मन में वो बाथरूम बड़ा ठंडा है, वहां तो बहुत गर्म होता था, मैं परसों मैंने नल चालू किया, मैंने कहा पानी बहुत ठंडा है, ब्रश भी ठंडे पानी से करते हैं, है ना। तो यदि मन इतना यूज्ड हो गया है सुख सुविधाओं के पीछे, तो मैंने बड़ा सूक्ष्म देखा अपने अंदर, मैंने कहा और ही अच्छा है, यहाँ तो और भी नहीं मिलना चाहिए, हैं? तब जाके पता चले कि कितना हमारे अंदर ताकत आई है, क्योंकि बाबा रेडी कर रहा है ना हमको डिस्ट्रक्शन के लिए। नहीं तो कल को डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप कैसे चलेंगे? आप तैयार हो, बाबा पूछता है, तैयार हो, नहीं? सब सुख सुविधाएं चली जाएंगी ना, फोन नहीं होगा, कुछ गर्म पानी नहीं होगा, ठंडा पानी भी नहीं होगा। मेरा तो अनुभव है जापान का, ना, कोबे में जब अर्थक्वेक हुआ था, तो उस दिन क्योंकि हमको, हम लोग पानी नहीं रखा था घर में स्टॉक, तो मैं तो उस प्यास में ही कितना तड़फ रही थी, दो डेढ़ दिन, इतनी प्यास, इतनी प्यास। फिर हम लोग गए एक होटल में पानी पिया,
जाके हैं, मेरे को अच्छी तरह याद है। अभी उसके बाद हम लोग पानी रखते हैं, 5 साल तक जो ठीक रहे पानी वो खरीद के रखा हुआ है, ताकि कल को अर्थ क्विक हो तो पहली बात पानी तो है। ये जापान में उन्होंने किया हुआ है इन्वेंशन, कि वो उनकी जो चीजें अभी बनी हुई है ना अर्थ क्विक के, जापान ने अर्थ क्विक में बहुत मास्टरी है उनको, तो उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हुई हैं, अर्थ क्विक हो तो बिल्डिंग गिरे ना, वो रोलर पर बनाते हैं, और पानी है जो 5 साल तक ठीक चलेगा, हमने तो सारा स्टॉक करके वही रख दिया। हाँ, क्योंकि कल को कुछ हो तो 5 साल जो पानी, मतलब नहीं तो पानी खराब हो जाता है ना बोतल का। हाँ, तो वो बहुत महंगा भी तो है ना, तो वो रखते हैं। चावल ऐसे बनाए हुए हैं पैकेट्स, बस आप उनको ऐसे दबा दो, थोड़ी हाथ की गर्मी से पक जाए। हाँ, इन्होंने इन्वेंशन की हुई है अपने देश में। अर्थक्विक तो होता है ना, वहां रोज होता रहता है अर्थक्विक, यू नो, तो उन्होंने मास्टरी करके अपना वो करे। सुनामी में मास्टर नहीं है वो, अभी सुनामी में धोखा खा गए ना बेचारे, तो ये अर्थक्विक में तो होशियार हैं, इनके पास तो सब कुछ है। यही लोग जाते हैं और देशों में सिखाने के लिए अर्थक्विक के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे जो भी हमारे अभी तक जीवन में सुख सुविधाएं हैं, यदि हमारा ब्राह्मण जीवन उसके आधार से चल रहा है तो खुशी खत्म हो सकती है, क्योंकि वो निकला तो खुशी गई। तो इसलिए यदि हमको खुश रहना है तो कहाँ जाना है? सूक्ष्म वतन परम धाम। ओके, ये दो जगह हैं जहां से खुशी मिलती नहीं, एक्सपीरियंस करनी है, अनुभव करनी है। ये साकार वतन में हम ब्राह्मण जीवन जीते हैं, है ना, और कर्मों के हिसाब से चलते हैं, और लेकिन आपके जो विचार बदलते हैं, कहाँ बदलते हैं? सूक्ष्म वतन में। और हाँ, मैं आपको वो बताती हूँ अभी, है ना, खुशनुमा चेहरा, ये चेहरा नहीं, मन का चेहरा। हाँ, अंदर की ऊर्जा चाहिए ना, अंदर इंटरनल आंतरिक खुशी की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी आंतरिक बातें हैं। नहीं, ऊपर हम कहें बहुत खुश नजर आ रहे, अंदर से हलचल मची पड़ी है, मुंह दिखा देते हैं खुशी का, लेकिन अंदर से बड़ी चिंता में, गम खा रहा है, दुख में बैठे हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, ये क्या है? खुशी गुम हो जाती है ना इससे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा आप देखो, हमारा जो ब्रेन के सेल्स हैं वो 100% काम होने करने चाहिए तो खुशी होती है। वैसे कहा ना कहा आपकी सप्रेशन है तो खुशी नहीं होगी। तो आप अपने ब्राह्मण जीवन में देखो, ब्राह्मण जीवन क्यों मिला है? अभी 2500 वर्ष हमने कहाँ कहाँ अपने को दबाया है, है ना, कहीं दबे हुए हैं, कहीं दुख लिया हुआ है कहीं से, वो अंदर ही अंदर दबा पड़ा है, और वो आपको खुशी नहीं रहने देगा। वो आपको निकालना है कैसे भी करके, चाहे आप बाबा को बोल दो ऑपरेशन कर दे योग भट्टी में बैठ के, या योग नहीं लग रहा हो तो बाबा को कोई यहाँ के बैठ जाओ बाबा आपसे हम दिल की बात करें, ये निकालें, कहीं ना कहीं तरह से ये कांटा निकालना पड़ेगा। वो आपको ही पता है वो कांटा क्या है, और वो 2500 वर्ष से बैठा है वो कांटा, जो आपको खुशी में नहीं रहने देगा। हालांकि बाबा खुशी देता रहेगा, लेकिन यदि वो अकाउंट है अंदर, है, चाहे वो अवगुण है, चाहे वो कोई कमी है, कमजोरी है, हमारे अंदर दाग है, या कोई पता नहीं किस जन्म में क्या किया था, मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं होगा, इस जन्म की बात नहीं है, ये कोई भी जन्म की बात हो सकती है, तो वो जो भारीपन है, चाहे वो अहंकार या जेलसी या सुस्ती कोई भी रूप में हमारे अंदर है अभी, वो टाइम टू टाइम प्रकट होता रहता है। पता चलता है आपको, आपके ही मन के विचारों में आती है वो एनर्जी, है ना, तो वो आपको, वो चाहे कुछ भी हो, बैड ओमेंस हैं, चाहे अनलक है, चाहे क्या भी नाम दे, तो वो एनर्जी जो है नेगेटिव, जो सप्रेस हुई पड़ी है अंदर, उसको आपको एक दिन बैठ के तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो खुशी अंदर की जमा नहीं होगी। बाबा तो दे रहे, दादियां दे रही हैं, वातावरण भी दे रहे, हजारों डॉलर पाउंड्स खर्च करके भी हम आ रहे हैं
लेकिन वो जो अंदर कांटा चुभा हुआ है, कोई भी जन्म का हमको नहीं, हमको नहीं मालूम है, आपको ही मालूम होगा अपना कांटा अंदर का, उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो क्या होता है, उसमें क्या होता है ऑपरेशन के लिए, आपको बहुत अंतर्मुखी बनना होगा, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और फिर आपको तपस्या में जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ 15 दिन के लिए आए, तो आप 15 दिन की तपस्या का प्लान करके आओ, प्लान करो अच्छा सा। तो वो क्या है, जैसे मैंने किया पिछले, मैं नवंबर में यहाँ थी 40 दिन, है ना, तो मैंने दादी जानकी को बोला, मैंने कहा दादी मेरा एक फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कहा ये मेरा कोई पास्ट कर्म है? कहती ओ, मैंने जब सुना तो मैंने सोचा ये पास्ट कर्म नहीं है, ओके, तो मैंने कहा ये प्रेजेंट कर्म अकाउंट है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तुमको देख के चेहरे से नहीं लगता तू सफर करती है। अच्छा दादी फिर क्या है? दादी ने कहा ये आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आया है, समझा इस बात को, मतलब मेरा मन तो पास्ट से भी सपोर्ट ले सकता था, ओ पास्ट का है खत्म हो गया, है ना, फिर भी मैं अलबेली, ओ प्रेजेंट का भी खत्म हो गया फिर भी पुरुषार्थ नहीं करती। तो दादी ने एकदम कहा कि आप पास्ट से भी नहीं ले सकते ये अकाउंट, प्रेजेंट का भी नहीं है, ये अभी और पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए हाँ आया है। तो मैंने कहा कौन सा पुरुषार्थ? ओ दादी ने मेरे को फोकस दिया, विदेही बनने का है ये आपको। तो फिर मैंने कहा ये तो अच्छा है चांस। 40 दिन फिर मैंने रोज शाम को 2 घंटे अपना विदेही, एक ही टॉपिक, एक ही स्थिति का मैंने कहा मुझे अनुभव करना है अच्छी तरह से। तो पहले कुछ दिन तो मन में कितने कितने विचार आते हैं ना, विचार आए, संकल्प आए, जाते रहे आते रहे। तो मैंने कहा बाबा मेरे 40 दिन में ये तपस्या में मुझे विदेही का अनुभव जरूर कराना, बढ़िया से बढ़िया अनुभव होना चाहिए। मैंने बाबा को अपना थॉट दे दिया। तो मैं रोज एक ही जगह पर बैठती थी बाबा के कमरे में, ज्ञान सरोवर में, 5:30 से 7, फिर आधा घंटा मैं वहां जाती थी योग कराने के लिए, है ना, 2 घंटे, और सारा दिन शांति, और खाना एक बार नहीं खाना है, सुबह का खाओ, दोपहर का, रात का छोड़ दो। स्टडी करो अच्छी, बाबा को याद करो, है ना, इतना योग करके आते हैं, दिल भी नहीं करता था खाने का। तो मैंने कहा आराम से हम बाबा की मुरली सुनेंगे, ऐसा करके हमने पुरुषार्थ किया। ओ किसी का फोन आ रहा है, देखना जरा, मैं आपको देती हूँ। तो इसलिए हम लोगों को, मैंने ये देखा कि मैं पता नहीं कौन सा दिन था, एक दिन मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ कि ये शरीर नहीं है बिल्कुल, जैसे कभी कभी हम अपने मन में शरीर की भी पिक्चर बैठ के रखी हुई है ना, नाम और फॉर्म, ये शरीर। मैंने देखा कि बाप रे ये तो बिल्कुल ही चमकती हुई आत्मा है, और कोई जो वाइब्रेशन अटैक करते हैं हम लोगों के स्वभाव के, संस्कार के, है ना, या कोई पास्ट के, वो सारे हमले खत्म हो गए, सो कोई नहीं अटैक कर रहा है अभी। किसी के संकल्प आ ही नहीं रहे। मैंने कहा ये तो बहुत हल्की स्थिति है, बहुत चमक वाली आत्मा देखी मैंने। मैंने कहा ये तो जैसे ये विदेही तो बहुत बढ़िया चीज है, क्यों बाबा कह रहे बार बार करो बच्चे करो, है ना, लेकिन रोज एक ही जगह बैठ के, एक जगह बैठकर एक ही संकल्प लेके, और 2 घंटे योग करने से मैंने ये देखा कि स्थिति का अनुभव होता है। क्योंकि रोज हम अमृत वेला करते हैं ना, फिर मुरली सुनते हैं ना, और फिर हम सारा दिन आवाज में भी आते हैं, है ना, फिर शाम को यदि आप अपना शाम का रख दो, 2 घंटे मुझे साइलेंस में रहना है, है ना, किसी से बात नहीं की मैंने, क्योंकि कोई था भी नहीं उस समय, सारे डबल फॉरनर्स पांडव भवन में थे। तो उस समय मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दादी ने कहा तुमको क्यों रहना है? मैंने कहा दादी मेरे को हॉस्पिटल में रोज थेरेपी करानी है,
अच्छा तू सेवा करेगी? मैंने कहा हाँ सेवा करूंगी, जो भी आप देंगे, लेकिन मेरे को रहना जरूर है यहाँ पर 40 दिन। ओके ओके, तो आप विदेही का अनुभव करके दिखाओ। ओके दादी मैं करती हूँ। तो मैंने फिर मैं दादी के पास गई, कहती तेरा तो चेहरा चमक रहा है। मैंने कहा दादी विदेही अवस्था का अनुभव करके आई हूँ। कहती है तो तुम जाओ फिर शेयर करो सब जगह। फिर दादी ने मेरे को भेजा मलेशिया में। कहती जाओ, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने कहा इधर अभी मैं आई ना, पहले ही दिन मैंने दादी को गई, मैंने कहा दादी वो विदेही का बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, अभी कौन सा करना है? तो दादी कहती है उसके बाद एक अवस्था होती है। कौन सी? मैंने कहा दादी मैंने आते ही पूछ लेती हूँ अपना फोकस में। तो दादी ने कहा ट्रस्टी, विदेही जब हम बन जाते हैं उसके बाद हमारी कोई किसी में आसक्ति नहीं होती है, हम ट्रस्टी बन जाते हैं। तो आप अभी ये देखते रहना अपने अंदर कि आपका मन किसी चीज में आकर्षित या किसी चीज को याद तो नहीं कर रहा है, क्योंकि याद भी तो कर सकते हैं ना, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को, सुख को, सुविधा को, है ना। आकर्षण तो बहुत नीचे की स्थिति है, मतलब स्लेव की स्थिति है, स्लेवरी माइंड है। लेकिन ये जो है ना, याद भी तो नहीं है ना, कोई आसक्ति, ग्रीड ना हो, अटैचमेंट ना हो, है ना। सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं ना प्रैक्टिकल में, तो इसलिए हमको अपनी खुशी ऐसे वैसे नहीं आएगी, खुशी आएगी ये सत्य ज्ञान को पालन करने से, अनुभव करने से। ये मेरा अनुभव है, तभी हमारा चेहरा चमकेगा और खुशी होगी और खुश नमा। मैंने दादी को चाइना में पूछा, गुलजार दादी को, मैंने कहा दादी लोग इतनी चीजें आपको देते हैं, क्या क्या लाते हैं, दादी आपको, आप तो पूछती भी नहीं हो ये क्या है, क्यों दादी आपको आकर्षण नहीं होता है? दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जब मेरे पास बाबा की शक्ति है, सर्व शक्तियां हैं, उसकी याद है, उसके आगे ये कुछ नहीं है, कहती। मैंने कहा बात तो ठीक कहती है दादी, नहीं क्या चीज है उसके पास, है ना, सर्व शक्तियां और उसकी याद, फिर मेरे को ये भौतिक चीजों की आकर्षण क्यों, वो तो बहुत सुखकारी चीज है, दादी ने बोला। तो अभी हमने एक और प्रश्न दादी से पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न था वो भी। हमने कहा दादी जो 8 के दाना है, 8 का दाना समझते हैं, 8 की माला, 108, 16,108, तो आप ये बताओ ये जो 8 वाला दाना होगा और 108 वाला दाना होगा, क्या अंतर है, अंतर बताओ, क्यों वो 108 में गया? दादी ने बहुत अच्छा बताया, कहा हर एक ब्राह्मण के जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, ये तो नॉर्मल है, विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी आपकी खुशी को गायब करने के लिए आएंगे, बस वो सूक्ष्म बात बताई, वो कारण जो बनता है आपके जीवन में, आप जब पुरुषार्थ करने लगे हैं, सेवा करने लगे हैं, योग में बैठने लगे हैं, या कुछ भी आप ना शुभ कार्य कर रहे हैं, सेवा का, बाबा का ऑर्गेनाइज करें, उस समय वो कारण आपको रोकेगा नहीं, समझा इस बात को, कारण आएंगे लेकिन वो कारण आपके आगे बाधा नहीं बनेगा। तो वो है 8 की माला, मतलब कोई भी कारण आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो रुक जाते हैं ना, बहुत थकी हुई हूँ, नींद करनी है, है ना, अच्छा बाद में कर लेंगे, हाँ ऐसे आ जाता ना विचार, योग बाद में कर लूंगी ना, बाबा आधा घंटा सो जाती हूँ कुछ भी कारण बनना, वो आपको पुरुषार्थ में जब भी आपका भाग्य खुलने वाला होगा और वो आपको कारण आकर के, हाँ तो आपकी खुशी को गायब कर देगा, ये सूक्ष्म है बहुत, हाँ बहुत अंदर का है ये, है ना, उस समय लॉजिक लगेगा बहुत कि ये बात ठीक है कर लेती हूँ, शरीर थका पड़ा है ना, परंतु वो आपके पुरुषार्थ के अंदर हाँ रुकावट है, क्योंकि विघ्न किसको कहते हैं, विघ्न का मतलब है कि आप जो अच्छा करना चाहते हैं उसी समय ऐसा विचार कमजोरी का आके आपको रोक देता है और आप उसमें खिंच चले जाते हो, हाँ आपका माइंड उसमें खिंच के चला गया, तो उसको विघ्न कहते हैं।
और यदि वो बार बार आ रहा है तो इसलिए उसको विघन कहते हैं कि आ जा नहीं रहा है ये, चाहे वो सुस्ती का भी हो, वो विघन होता है। टेस्ट अलग होता है, टेस्ट तो थोड़ी देर का होता है, चुनौती बड़ी होती है, चुनौती चैलेंजेस। तो विघन आते हैं, लेकिन विघन को दूर करने के लिए आदतें हम बदल सकते हैं। संस्कार बाद में बदल जाएगा, पहले आदत, क्योंकि एक आदत बार बार करने से आओ संस्कार बनता है ना। तो पहले हमको क्या बदलना है, आदतें। हम सबको अपनी अपनी आदतें तो पता ही है, क्या क्या हैबिट्स हैं हमारे अंदर, यू नो, उसको बदलना बहुत जरूरी है, तभी हमको खुशी रह सकती है, तभी हम उस खुशनुमा चेहरे से। क्योंकि बात यह है कि आपने जो जीवन में सुख पाया है गुण का धारण करने से, शक्ति को धारण करने से, वो सुख आप दूसरों को दे रहे हैं अपने ही गुण द्वारा, तभी तो खुशी होती है। हा? यदि हमारे अंदर कमजोरी का विचार आ गया तो वो दूसरों को कमजोरी सुनाने से खुशी होती है आपको? खुशी किस में होगी? जिस चीज को आपने जीता है अपने जीवन में। क्रोध को जीता है तो शांति का दान देने से खुशी होगी। जो आपने जीता है, जिस चीज पे आपने काम किया है बैठ के अपने जीवन में ना, भी दादी जानकी को खुशी बहुत होती है। उस दिन आई दादी जानकी, दादी गुलजार को मिलने, दादी कहती है हम और क्या बात करेंगे, मालूम है क्या बात करते हैं, दादी देखो हमारा कितना अच्छा भाग्य, हम सब का भाग्य की बात कर रहे हैं, कितनी खुशी, प्राउड हो गया ना, हमारा भाग्य कितना अच्छा है। यदि हमने अपने अवगुणों को नहीं निकाला है तो वही चीज टाइम टू टाइम आकर हमारे मन में संकल्प के रूप में हमको डिस्टर्ब करती रहेगी। तो आपने कहा ना वो ऑपरेशन कैसे हो, उसके लिए आप प्लान करो कि 12 दिन, 13 दिन, 40 दिन, जो भी आपको चाहिए, आपको बैठना है योग में और वही जगह बैठना है और एक फोकस लेके बैठना है, एक ही स्थिति का अनुभव करके जाना है यहां से, और शांत में रहना है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। क्योंकि जब हम योग करते हैं ना, तीन बातों की जरूरत होती है उसमें, एक है कंसंट्रेशन, एकाग्रता मन की, दूसरा है ये जो आपकी फीलिंग्स होती है ना हार्ट, वो बहुत क्लीन होनी चाहिए, तभी जाके योग लगेगा ना। यदि आप योग कर रहे हो बाबा से और वो आत्मा जिसके साथ हमने वैर भाव पाल रखा है, तो वो आकर के आपको रोक सकती है, आत्मा फीलिंग्स के रूप में वो रोक देगी आपको, वहां पर बाबा के नजदीक जाने ही नहीं देगी वो आत्मा। आपने देखा है कभी कभी वो याद आ जाता है, इतना अच्छा वाइब्रेशन आ रहा था बाबा की याद का, प्यार के संकल्प चल रहे थे, थोड़ी देर में मन कहां चला गया? हाँ, वो अकाउंट अभी पड़ा है। तो इसलिए अपनी फीलिंग्स को बहुत पवित्र बनाना है, शुभ, रोज शुद्ध करते रहना है अपने दिल को। इसलिए हम तो ब्रह्मा बाबा के कमरे में जाते हैं ना, क्योंकि उसने ये काम किया था, रोज ही रोज अपनी फीलिंग्स को साफ किया था, तभी तो उसके प्रकंपन अच्छे हैं ना उस कमरे में, बैठो तो दिल साफ हो जाता है, क्योंकि बाबा ने वो काम किया हुआ है अपने ऊपर, तो इसलिए वो वाइब्रेशन है, इसलिए वो वाली वाइब्रेशन आपको मिल जाती है, प्रकंपन मिलते हैं, यू नो। तो इसलिए बाबा की याद के लिए तीसरी बात है, एक है कंसंट्रेशन, एकाग्रता मन की बहुत अच्छी चाहिए, एकाग्रता समझते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, फोकस, कंसंट्रेशन, मतलब क्या भी हो रहा हो उसमें इंटरेस्ट नहीं लो। कई बार लोग बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे, हम कहेंगे अच्छा ये हुआ, फिर अच्छा ये हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके यहाँ बैठ जाती है तो फिर आपका चिंतन चलता है, फिर मुख से वर्णन हो जाता है, फिर वो संस्कार बन जाता है ना। कुछ भी हो रहा है हमको ना लेना ना देना, हमारा काम नहीं, तो इसलिए कंसंट्रेशन अच्छी बनती है। दुनियावी बातों में हम ध्यान ना दें, संसारी बातों में, नहीं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तंग करती है, तो इसलिए कंसंट्रेशन। दूसरा है फीलिंग्स, आप सबके प्रति प्यार रखो, वैर भाव किसी से भी हो तो सॉरी कर दो आज से, देखो भाई हमारे से गलती हो गई थी, मान लो, क्योंकि योग बहुत बढ़िया चीज है रादर देन वैर भाव, नहीं, योग तो योग है ना, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आप बाबा के ले सकते हो, और वो आत्मा क्या वाइब्रेशन देती है आपको,
है ना, क्यों अटका के बैठे हैं उसको अंदर फीलिंग्स के रूप में, उसको भी सॉरी कह दो, लिखना है तो लिख दो भाई सॉरी हो गई गलती, अभी आगे से हम ध्यान देंगे, खत्म करो उस आत्मा के साथ, वाइब्रेशन क्लियर कर दो ताकि आपका योग बाबा से लगे। फिर तीसरा है ये जो हमारी जो बुद्धि होती है ना, ज्ञान की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, जो ज्ञान है वो ज्ञान वाली बुद्धि बहुत शार्प चाहिए, बहुत अवेकनिंग चाहिए उसमें, जागृत अवस्था चाहिए। क्योंकि यदि आपके मन में मान लो कोई पास्ट का, क्योंकि संस्कार हमारे बड़े वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बहुत पावरफुल होते हैं, वो ना थॉट्स के रूप में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो बुद्धि जो है सो रही होती है, वॉचमैन तो है लेकिन सो रही है, उसको पता नहीं चलता, तो एकदम फटाफट आके आते जाते हैं थॉट्स, वो पता कहां से आ रहे हैं, संस्कारों से। हाँ, तो वो संस्कार इतने पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल है एनर्जी ये, कि वो बुद्धि को ओवरपास कर देती है, ओवरपास समझते हैं। हाँ हाँ, बुद्धि जो है उस समय जागृत नहीं है तो वो संस्कार संकल्प के रूप में आ जाता है। तो बुद्धि का काम क्या होता है, फास्ट शार्प अवेक एंड एक्टिव, तो वो जो आ रहा है थॉट उसको क्लियर करना मन में, यदि आ गया थॉट तो बुद्धि उसको देखती है, आ ये पास्ट का आ गया, फिर अभी मेरे को इसके ऊपर ना सोचना है, ना इसको इंटरटेनमेंट देनी है, ना बोलना है, नहीं तो फिर वो बन जाएगा संस्कार। हाँ, तो इसलिए अवेकनिंग बहुत चाहिए इंटेलेक्ट की, और बहुत फास्ट चाहिए, एक्टिव इंटेलेक्ट चाहिए, नहीं तो फिर हम बार बार बस योग में वही थॉट्स कर रहे हैं, संस्कार वही आ रहे हैं, थॉट्स वही कर रहे हैं, है ना, चेहरा ही नहीं बदलता है, खुशी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि एनर्जी बननी नहीं ना, अंदर बनानी पड़ेगी ना, तो ये काम करना पड़ता है अंदर, अवेकनिंग चाहिए, वो जबरदस्त जागृत एक्टिव फास्ट, तो फटाफट थॉट आए ना वो क्वालिटी देखनी पड़ती है, फिर आ गया ये, इसको क्लियर करो, ना सोचने दो इसको, ना बोलने दो, उधर ही बुद्धि को खड़े हो जाओ, ठीक करो इसको, नहीं तो बन जाएगा ना, थॉट में चला जाएगा, फिर हम योग कर रहे हैं बाबा के साथ, वहां बात कर रहे हैं किसी के साथ मन से, तो योग कहां लगा पड़ा है, पास्ट सिचुएशन या व्यक्ति, तो क्लियर नहीं हुआ ना अकाउंट। तो फिर जब हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है, बुद्धि बड़ी पावरफुल और फास्ट है, फीलिंग बहुत अच्छी है, तो जो आपका योग होता है ना, योग मीन्स आपका मन जो है जब बाबा में चला जाता है, टोटल टोटल कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब जाकर के बाबा से एक शक्ति मिलेगी आपको, जिससे आपके पुराने संस्कार शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम योग कहते हैं, क्योंकि योग से संस्कार शिफ्ट होने चाहिए, चेंज आनी चाहिए अंदर, नहीं तो वो पुराने संस्कार काम करते रहते हैं। समझ आया? तो इतना 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 ज्ञान का अच्छा अच्छा विचार चलना चाहिए सारा दिन, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो जिसमें आपको प्रेरणा मिले अच्छे विचार की, और बाबा की मुरलियां पढ़ो, इतनी सारी बुक्स हैं अपने ज्ञान में जगदीश भाई की, कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, वो सुनते रहो पढ़ते रहो, ताकि आपके जो थॉट्स होते हैं ना ये ज्ञानी चलने चाहिए, नीचे नहीं जाना है ना दुनियावी बातों में, ना इसका इंटरेस्ट, ना वो फालतू की बात, उसमें मन नहीं लगाना है, यदि उसमें लगाएंगे तो वो योग हो जाएगा, योग इसमें चाहिए, ज्ञान का इंटरेस्ट और योग वाइब्रेशन लेने का, क्योंकि ना हम एक्चुअली योग जो है मुश्किल, क्योंकि मन का काम है ना, संकल्प आप मन की शक्ति यूज कर रहे हैं ना, और वो मन है ना उसके साथ बात करना है जिसको आप देख नहीं सकते हो, और उससे शक्ति लेके आना है जिसको आपने शरीर के रूप में नहीं दे सकते, समझ रहे हो इस बात को, और मन को उससे ड्रॉ करना है, पावर विजडम गुण तीन चीजें आपको बाबा से मिलेंगी, मन नहीं, मन का काम है संकल्प करना, राइट, आप ये जो सोच चला रहे हैं बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, बाबा आप सर्वगुण संपन्न है, बाबा आपके अंदर ये गुण है, बाबा मैं आपके साथ मिलकर के अनुभव कर रही हूँ, इतना आप विचार ऊंचा करते जाएंगे, विचार को ऊंचा बनाते जाएंगे, तो वो विचार जाके कनेक्ट करेगा ना बाबा से, ठीक है ना, तो वो मन का काम है ना,
मन से करना, सोच तो मन से चलेगा, बुद्धि तो देख रही है कि मन इधर उधर जाए ना, बस यही कर रही है ना बुद्धि, अटेंशन है ना, वो तो अटेंशन मैं रख रही हूँ कि ये थॉट इधर उधर ना चले जाए, नहीं क्योंकि हाँ मन को लगाओ ना, तो मन के विचार को लगाओ, जो आपका मन की क्वालिटी है सोचने की वो वाली ना शुद्ध सोचने की हो जाए, शुद्ध जैसे बाबा शुद्ध सोचता है मैं भी शुद्ध सोचूं, है ना, वो है कनेक्शन। यदि आप अशुद्ध सोचते हो वो रावण के साथ योग हो गया, शुद्ध सोच रहे हैं तो हाँ बाबा के साथ हो गया, नहीं तो मुरली जो है बाबा की मुरली, तो मैं आपको बता रही थी ये जो रियल योग यही है जिसमें आपका मन तीन चीजें पकड़ सकता है बाबा से, विजडम, गुण और शक्तियां, मतलब शक्तिशाली संकल्प हा? और ज्ञानी संकल्प, और बाबा से ये आप ले सकते हो गुण, शक्ति, विजडम। यदि आपका मन इतना ऊंचा काम कर सकता है तो योग है, उसको कहते हैं योग, क्योंकि उससे परिवर्तन आता है ना भाई, डिफरेंट लेवल की थिंकिंग हो जाएगी ना, आपकी सोचने का ढंग बदल जाएगा ना, ज्ञानी हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, वाइज हो जाएगा ना, उसी को तो योग कहेंगे ना। नहीं तो हम थोड़ी देर योग करें, अच्छा शांति का अनुभव हो गया, बाकी सारा दिन आपका मन जो है वैर भाव के विचार कर रहा है, रिएक्शन के विचार कर रहा है, रिजेक्शन के विचार कर रहा है, ये पुरानी आदत से चल रहा है मन, ये पुरानी आदतें कहते हैं ना इसको, रिजेक्शन, रिएक्शन, है ना, कंपेयर करना, द्वापर युग के संस्कार आ जाते हैं फिर, या कलयुग के संस्कार हैं, तेरा सो मेरा, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, ये कलयुग के, इसको हाथ नहीं लगाना, ये मेरी चीज है अटैचमेंट के, है ना, न्यारे प्यारे के तो नहीं हुए ना, फिर ब्राह्मण चलो बन गए तो न्यारा प्यारा, चलो सब आप यूज करो, मैं भी यूज करूं, आप भी यूज करो, ना तेरा ना मेरा, बाबा का है, चलो मिलजुल करके, है ना, इतने लेवल तक या तो स्थिति बनाए, है ना, ब्राह्मण जीवन की। तो इसलिए ये जो खुश रहने के लिए ये सारा अंदर की तैयारी है, कमाई है, जमा है, अटेंशन है इसके लिए। हमने देखा अभी, मैं तीन दिन दादी गुलजार के साथ ही, मैंने सारा टाइम नोट करती रही दादी का चेहरा तो मैंने देखा कि दादी को सारा दिन खुशी है, कुछ भी प्रकार का बोल नहीं, ये गिने चुने बोल है, गिना चुना खाना है ना, थोड़ा सा खाना बाबा की याद में, थोड़ा सा बोला बाबा की बात बोली, हम सब बोल रहे हैं, दादी शांति से बैठिए, दादी आप क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ है नहीं बोलने को नहीं, इतना मैंने कहा दादी आपके अंदर बाबा आते हैं तो बाबा आते हैं, आपको ये नहीं आता बाबा आता है मेरे अंदर, ये भी नहीं आता बाबा आता है मेरे अंदर नहीं, यदि ये आ गया तो बाबा नहीं आएगा, समझा, इतना अटेंशन उसको अपने मन में देना है कि इतने तक भी नहीं सोचना मेरे अंदर बाबा आते हैं इस शरीर में। हाँ, इंक्रीज इंक्रीज करने के लिए, मतलब कितनी बातें आती है ना रोज, हाँ हाँ, नहीं ये ध्यान सावधानियां कहती है बहुत हैं। हम लोगों ने यही पूछा कि यदि बाबा आपके अंदर आते हैं दादी तो आप क्या ध्यान रखते हैं, कहती बहुत सावधानियां रखती हूँ। मैंने कहा दादी आप वो कहाँ से लेते हो सावधानियां, बाबा ने बताई थी क्या, मुरली, बाबा की सारी मुरली को अटेंशन में रखना होता है, जो डायरेक्शन बाबा देते हैं मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि देखो दादी दादी तो न्यूट्रल है ना, अभी दो मान लो दो ग्रुप गए, दादी ये हमारी प्रॉब्लम है, दादी इसने ये किया, दादी वो फेवर भी नहीं ले सकती ना दादी, वो फेवर लेंगे कल बाबा आएंगे वो सोचेगा ये तो दादी उसका फेवर लेती है, बाबा याद ही नहीं आएगा, नहीं उनके द्वारा उनका वो दिखाई दे देगा ना, तो दादी को इतना ध्यान देना है कि कोई शब्द फेवर का किसी के लिए ना निकले, सब एक समान, कितना ध्यान है, और एकदम सबके लिए शुभ बोलना, कितना ध्यान है, और कम बोलना, बहुत सावधानियां दादी की थी मैं रखती हूँ, बहुत सावधानियां मुरली से लेती, तो मुरली स्टडी करना, नोट्स बनाना, वो ज्ञानी योगी जीवन चाहिए ना, नहीं तो हमारी ऑर्डिनरी लाइफ हो जाती है ना। हाँ, ज्ञान से। हाँ, क्योंकि जो माया है ना, जो वो तो कोई भी आत्मा निमित्त बनेगी, चाहे कोई घोड़ा सवार हो, प्यादा हो, महारथी, कोई किसी से भी आ सकती है माया, ठीक है, तो माया तो आएगी, लेकिन आती इसलिए हमको स्ट्रांग बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। यदि ये ज्ञान की पॉइंट याद रह गई तो आप बच गए। यदि ये सोच रहे ये व्यक्ति, ये बड़ा इतने साल ज्ञान से, ये भी माया है सोचना। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आ गई ना, कि इतना ये आत्मा इतने साल से ज्ञान में है, इसका बोल तो बहुत रफ है, हम ही जजमेंट दे रहे हैं उसको। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपना ध्यान रखना है। क्योंकि ये कहते हैं जैसे पहाड़ी पे चढ़ो तो पीछे नहीं देखना होता है, पीछे देखे तो गिर गए। यदि मैंने किसी का अवगुण देखा तो मैं 15 दिन पीछे चली गई पुरुषार्थ में। यदि भक्ति में आप देखो, भक्ति में क्या होता था, एक तरफ गीत गा के भजन गा के आते थे, माला जप के आते थे, घर में आकर फिर एक दूसरे की परचिंतन करते थे, है ना, आदत तो वही रही। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद, मान लो हम बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन आदतें तो भक्ति की हैं। यदि हमने किसी का अवगुण देख लिया, है ना, और माला कैसे जपते हैं, वैसे माला हाथ से जपते हैं, या किसी के अवगुण को चिंतन में लाते हैं तो माला ही जप रहे हैं, समझ गए। तो मान लो वैसे हम भक्ति नहीं कर रहे हाथ से मुख से, परंतु मन में, मन तो भक्ति का ही काम कर रहा है अभी तक। ये इसलिए ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, ये मन के विचार को बदलने का ज्ञान है। इतना पॉजिटिव बनना है हमको, इतना पॉजिटिव बनना है जो अमृत वेले आपको बस खाली बाबा से ही पॉजिटिव एनर्जी अभी मिल सकती है, शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से। खाली ये दो ही आत्माएं इस दुनिया में जो जिनके पास शरीर नहीं है, तो इसलिए आपको उनके पास ही जाना है सुबह सुबह अपना थैला भरने के लिए। अमृत वेले इतना ओरा ओरा जो कहते हैं ना हम, इतना पॉजिटिव का जमा करना है, इतना पॉजिटिव सोचना है, अमृत वेले इतना पॉजिटिव सोचना है कि सारा दिन में आपके आगे कोई भी इंसल्ट करे, कोई भी दुख दे, कोई भी आपके प्रति नेगेटिव हो जाए, कुछ भी करने को तैयार हो जाए, आपकी पॉजिटिव ओरा, आपकी पॉजिटिव जमा हुई अमृत वेला की जो कवच है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अभी बस यही रह गया है। हाँ, अमृत वेला पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी से अपने को भरना है। पॉजिटिव थॉट्स करो हर एक के प्रति, हर एक आत्मा के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, सबके प्रति पॉजिटिव 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 बोलना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है। ये आपका ऑरा होना चाहिए। तो लोगों कोई भी आएगा ना, आपको नेगेटिव भी बोल जाएगा, आपकी एनर्जी जमा हुई है ना पॉजिटिव, तो आपको फील नहीं होगा। यदि आपके अंदर पॉजिटिव जमा नहीं है तो कोई नेगेटिव बोल के गया आपके लिए फील होगा। तो इसका मतलब मेरे अंदर हाँ पॉजिटिव इकट्ठा नहीं हुआ है। तो वो अमृत वेले इकट्ठा करना है। अमृत वेले का सुबह का टाइम जो बाबा एनर्जी भरेगा ना आपके अंदर ऊर्जा, वो है सुबह का टाइम। फिर सारा दिन आपको खर्च करनी है। झूठ का ना, झुटका तो आएगा, वो तो माया बैठी है ना हर सेकंड झुटका दिलाने के लिए। माया का तो काम है ना झुटका का, मतलब झुटका इसलिए आता है क्योंकि अभी तक अपने हमने वैल्यू को नहीं देखा है, ना अपने जीवन की वैल्यू, ना समय की वैल्यू। बाबा तो देखो ना दे रहा है, बाबा तो इतना अवेक है, इतना अवेक है। उस समय आप अवेक है तो आपको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस लगेंगे ना, परम धाम जैसे। आज हम लोगों ने अमृत वेला किया ना वहां पर हार्मनी हाउस में, तो आज स्पेशल साइलेंस डे मना रहे हैं ना, तो डेविड भाई ने 2 गीत गाए, हिंदी गीत ही नहीं चलाया आज उसने गाए, बहुत अच्छे गीत थे।
वो कहते तू आत्मा, परमात्मा कहते तू मेरा बच्चा है, ऐसे इंग्लिश में था गीत, यू आर ए सोल, यू आर माई चाइल्ड, चाइल्ड नाउ इज द टाइम टू रिटर्न होम, है ना। बहुत अच्छे से ओरिजिनल ज्ञान का गीत गाया, बहुत अच्छे वाइब्रेशन, कोई झुटका नहीं मार रहा था। नहीं तो नींद आती है, कई बार वातावरण थोड़ा सा चेंज करने से भी अच्छा है। देखो एक भाई था, तो उसने कहा, मैंने कहा तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है, कहते भाई मेरा अमृत वेले का ये पुरुषार्थ है, तो मैं यदि नेचुरल 3:30 उठ जाऊं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं उठता हूं तो अलार्म लगाता हूं और चाय बना के पीता हूं और मुरली पढ़ता हूं और 5 मिनट ऑक्सीजन बाहर थोड़ा ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन लेके ब्रेन के लिए फिर बैठता हूं, है ना। तो यदि आप आधा घंटा ये पुरुषार्थ कर सको, थोड़ा कॉफी या चाय जो भी पीना हो फ्रेश करने के लिए अपने को, थोड़ा 5 मिनट बाहर जाओ फ्रेश यू नो ब्रीदिंग करो, थोड़ा ऑक्सीजन जाए नसों में ब्रेन में जाना चाहिए ना, तब काम करेगा, क्योंकि सारी रात शरीर वो हो जाता है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा फ्रेश करना है, एक्टिव बनना है, थोड़ा चलना है, थोड़ा बाबा की मुरली पढ़नी है, 3 एफर्ट करने पड़ेंगे आपको, मुरली पढ़ो चाय पियो है, हाँ कुछ भी करो पुरुषार्थ करो। क्या होता है कि यदि आप ना बैठ गए, उठ के बैठ गए, नींद आएगी, उठ के थोड़ा चलो फ्रेश हो जाओ, ब्रीदिंग अच्छी हो, डीप ब्रीदिंग हो, थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए ना ब्रेन के लिए भी, अवेकनिंग है ना ये भी शरीर के लिए, थोड़ा चाय पीनी हो चलो चाय पी लो 2 घूट 3 घूट। जैसे दीदी मनमोहिनी का था ना, दीदी मनमोहिनी जो यहाँ थे पहले, तो उसका पुरुषार्थ यही था 3:30 बजे स्नान करने का, तो वो उसको छोटा स्नान कहते हैं, तो वो दीदी हमेशा कितने साल से जब से ब्राह्मण बनी थी उसका नियम था रोज 3:30 बजे उठ करके स्नान करना, फ्रेश हो जाओ थोड़ा पी लो, रियली जैसे दिन चालू करते हैं ना, यदि हम अमृत वेले को एक चीज साइड समझ लेते ना, अमृत वेला किया जैसा भी किया अभी सो जाओ फिर उठ के फिर दिन शुरू करो, नहीं दिन शुरू करो 3:30 से, हाँ मतलब पुरुषार्थ है ये अमृत वेला, ऐसे कोई बैठ जाए ऐसे नहीं है, उसके लिए थोड़ा हाँ फिजिकल भी एफर्ट है मन का भी एफर्ट है। हाँ मुरली पढ़ेंगे तो लक्ष्य मिलेगा ना, मैंने देखा है जापान में तो जो हमारे सेंटर की बहनें वो सोल्जर जैसे हैं, जैसे सोल्जर होते हैं ना, वो तो उठ जाते हैं 3 बजे उठ जाते हैं रियली, वो नीचे सोते हैं ना वहां तो बिस्तर फटाफट बांधेंगे अलमारी में रखो फटाफट, है ना, फिर जाएंगे किचन में उन्हें स्नान करो, रियली जैसे सोल्जर होते हैं, रात को अपना कपड़ा बांध के रख देते हैं सुबह उठा के गठड़ी बाथरूम में जाओ उनके वहां गठड़ी जैसे पुराने जमाने में होती थी ना वो बांध के रख देते हैं, मैं तो स्पेशल कपड़ा होता है वो बांध के रख देते हैं, मैं रात को रोज क्या करते हैं गठड़ी बांधते हैं सुबह के लिए वो उठा के जाएंगे, अभी भी यहाँ पे भी सभी जापानीज ऐसे करेंगे, उनके पास एक वो होता है स्पेशल कपड़ा, उसमें अपने कपड़े सजा के रख देते हैं, गठड़ी उठाई जाओ बाथरूम में स्नान करके 3:30 बजे फ्रेश, फिर आराम से ये लोग अपनी अच्छी सी ट्रे में चाय पियेंगे, मुरली साथ में रखेंगे, फिर मुरली भी पढ़ेंगे, हैं 5 to 4 जाकर के ये लोग योग में बैठे, सीधा पावर लेनी है बाबा से शक्ति लेनी है, रियली काम करती है ये चीज, आंखें बंद नहीं होती उनकी, ऐसे देखते हैं बाबा से पावर आए यू नो मैंने देखा चाइना वाली बहन को, मैं तो हैरान हो गई, उसका बाबा का कमरा इतना पावरफुल है मैं क्या बताऊं, 24 घंटे ट्रांसलाइट चलती है, और इतना बड़ा चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, और उनके आगे कितनी कितनी बातें आती हैं, पुलिस कभी केस कर देगी, पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस वो, क्योंकि राज्यों का काम चल रहा है हमारा, और स्पाई होते हैं वहां पर, है ना, हम 8 को भी क्लास कराएंगे वो पकड़ के ले जाएंगे आपको, है तो कहती कभी कभी पुलिस कहेगी हम कल आ रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, कहती मैं 2:30 बजे उठ जाती हूँ मैं कहती हूँ बाबा आज वो आ रहे हैं पकड़ने के लिए, अभी आप कुछ कर दो, उनकी बुद्धि में सोए पड़े हैं अभी सभी सारे सिपाही वो हैं जो भी पुलिस है, बाबा आज मैं 2:30 बजे उठ गई हूँ, विघ्न आ रहा है करो कुछ, तो बाबा के सामने ऐसे कहती बैठ जाती हूँ, दादी गुलजार को उसने सारा दिखाया पिछले साल जब हम गए थे चाइना, कहती दादी ये है कमरा,
जिससे सारा मैजिक होता है। बाबा की ट्रांसलाइन 24 घंटे चल रही है। मैं 2:30 बजे उठती हूँ जिस दिन पुलिस फोन कर देती है आ रहे हम पकड़ने के लिए, क्योंकि बाबा का काम नहीं करने देते ना, वो भगवान को नहीं मानते ना। कम्युनिस्ट कंट्री है, 3 से ज्यादा हम लोग किसी को क्लास नहीं करा सकते। यहाँ तो देखो फ्रीडम लगी पड़ी है, कितना भगवान का नाम लो, कितने लोग बैठे हैं, हजारों आ रहे हैं। भारत है ना, भगवान से प्यार है। फोन आ रहा है फिर तो, इसलिए बाहना उसने कहा जब विघन आता है तो मैं 2:30 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर नीलू बहन ने कहा विघन नहीं आता, कहती 4 बजे उठती हूँ। तो बड़ी अच्छी है तू, तो 2:30 बजे हाँ कह दे, जिस दिन फोन आ गया हम बाबा को 2:30 बजे उठ के, बाकी ठीक कर दो वो, उसको ठीक कर दो। तो बाबा करता है 2-3 घंटे में, कहती कर देता है काम मेरा तो, कहती मेरा तो अनुभव है, है? नहीं आती है। फिर जिस दिन वो फोन करते हैं ना, वो तंग करते हैं ना पुलिस वाले वहां। एक बार दादी गुजार गई, हम लोग सब पुलिस आ गई, रास्ते में उतार दिया उसको। चलो उसने कहा ये हमारे इंडिया के टीचर हैं, योगी हैं, चलो चलो तुम चलो उनको जाने दो योगा सेंटर पे। हम गए योगा सेंटर पे, बेचारी को उतार दिया क्योंकि उसने इन्वाइट किया ना वहां पर, राइट? तो वो तुम्हारी योगा टीचर, ओके, चाइना में राजयोग को नहीं मानते, मेडिटेशन को नहीं मानते, हठ योगा को हम मानते हैं, ये उन्होंने हमको बताया हुआ है। फिर भी हम राजयोग मन को बदलने के लिए जा रहे हैं ना, भगवान का काम करने को पसंद नहीं है ना, वो है ना कम्युनिस्ट है। तो फिर उसको ऐसे ठंडे कमरे में बिठा दिया, इतना कोल्डेस्ट रूम में बिठा दिया 4-5 घंटे। और हम लोग चले गए, मैंने कहा दादी वो तो वहां बैठी है अभी, मालूम नहीं कब आएगी। पुलिस ने कहा वहां बैठ जाओ। तो वहां पर 200 लोग आए हुए थे, वो भी डर रहे थे, वो सब नाम लेके जाए हम सबको। तो फिर वो 4-5 घंटे बैठी रही ठंडक में, सारा ठंडा ठंडा कमरा। तो ना फिर वो आ गई 4-5 घंटे, मैंने कहा क्या हुआ? फिर कहती है वो मेरे को बिठा दिया उन्होंने ठंडे कमरे में। अच्छा, तुम्हारे अंदर यदि शक्ति है कि ये सत्यता है, हम आपको ठंडे कमरे में बिठाएंगे, पनिशमेंट देते हैं ना, तो यदि तुम्हारा हाथ वगैरह गर्म रहा तो समझेंगे तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है। तो वो बाबा की ऐसी शक्ति, उसने बाबा को इतना याद किया उसका हाथ पांव ठंडा ही नहीं हुआ गर्म ही रहा है। तो उन्होंने हाथ लगाया, ओ तुम तो ठंडी नहीं हुई। हाँ नहीं हो, कैसे हो सकती हूँ, मैं तो योग में हूँ। तो उसने कहा ना मैं तो वाइब्रेशन ले रही हूँ, यू नो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। ओ तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है, तुम ठंडी नहीं हुई, इतना कोल्ड हमने बना रखा सजा है तुम्हारे लिए। फिर वो उसका हुआ नहीं तो वो उसको ले गए वापस, छोड़ के गए हमारे पास है। तो मैंने कहा तू पास हो गई? कहती पास हो गई। मतलब हम लोगों के आगे दूसरे प्रकार की माया है, उनके आगे ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है ना। कम्युनिस्ट है तो हरेक को पार तो करना है, चाहे आप गवर्नमेंट की माया पार करो, चाहे आपको शरीर की माया पार करो, चाहे आप संस्कारों की माया पार करो। जहां बहुत सुख सुविधाएं, वो सुख सुविधाएं आपके लिए माया है, यू नो। उनके देश में भगवान को नहीं माना जाता है और हम भगवान का काम कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा जू विघन डालेंगे या नहीं। कभी कभी वो तो कहेगी ओके ओके, हमारी दादी आई हुई है, तुम ले जाओ मेरे से पैसे, खाओ पियो मजे करो, हमारी दादी रक्षाबंधन तो हम तब तक राखी बांध लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा खाना खिला देते वेजिटेरियन, ताकि बाबा का काम भी साथ साथ चलता रहे। सड़कें बनवा देती है वो ताकि चलता रहे बाबा का काम। मतलब उनके देश में फिर ये विघन है ना, हम तो सुखी बैठे हैं यहाँ देश के, कोई गवर्नमेंट आपको तंग थोड़ी कर रही है। आप भगवान का नाम लो लाखों बार, क्या करते हैं? याद करो, कुछ कहेंगे कोई? फिर उनकी वो विघन है, हरेक के अपने अपने टेस्ट तो पार करने पड़ेंगे। तो हम कितना सुखी बैठे हैं, भगवान ने किसी को कहा होगा ये धुलाई करके बिछा दो, बच्चे सोफे लगा दो, हम आकर के बैठ गए। ये हमको बाबा ने भाग्य दिया या नहीं दिया है? उन देशों में आप जाओ जहाँ भगवान को नहीं मानते, बापरे कैसे वहां पर सेंटर चलाएंगे। वो तो भी कितनी हिम्मत करके सेंटर चलाते हैं वहां पर, स्काइप से रोज मुरली सुनते। एक भाई रोज मुरली ट्रांसलेशन करता है चाइनीज में, 36-38 लोग सुनते हैं बैठ के। हाँ इकट्ठे नहीं हो सकते तो भगवान ने स्काइप बना दिया, इकट्ठे नहीं हो सकते वहां। 3 से ज्यादा हुए तो गड़बड़ है, उनका कानून है ना, कानून तोड़ा ना हमने। तो इसलिए बाबा कहते कहीं भी हो आप, जहां भी हो, मेरी याद से आपके विघन कटेंगे, तभी वो देखो खुश कितनी रहती है वो आत्मा,
कितनी के भारी भारी विघ्न पार किए। कहते हैं उसने कहा था, कहती कृष्ण भी जेल में गया था, महात्मा गांधी भी। कहती हम भी देखेंगे बाबा के काम में कौन ले जाता है हमको। मतलब ताकत लेती है ना, महात्मा गांधी से भी ले ली, कृष्ण से भी ले ली। और अपना बाबा है ये तो सर्वशक्तिवान है, मेरे को शक्ति दे रहा है, ये कमरा मैजिक कमरा है, वहां तो बैठ जाती है इस फर्श पे सीधा, ठंडक में भी बैठ जाएगी, क्योंकि बाबा पावर देता है। फिर ऐसी स्थिति में बाबा बाउंड टू हेल्प यू नो, बाबा है ना, वो बच्चे ने पुकारा है ना, तो मदद तो करेगा ना बाबा। ऐसे थोड़ी बाबा ऑर्डिनरी आत्मा है, आपका एक एक वाइब्रेशन उसके पास पहुंचता है, यदि पॉजिटिव है तो। नेगेटिव नहीं पहुंचेगा, वो उसके पास जाएगा जिसके पास जाना है। बाबा के पास सारे गुण वाले वाइब्रेशंस जाएंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल आत्मा है ना, वो तो कैच भी वही करेगा ना बाबा। फालतू का थोड़ी बाबा हमारा रबिश लेगा हमारे से, यू नो। तो इसलिए आप बाबा को समझो, बाबा क्या चीज है। मतलब नेगेटिव सोच, हाँ, क्रोध वाला सोच, वैर भाव वाला सोच, दुख देने वाला सोच, सुस्ती वाला सोच, ईर्ष्या वाला सोच, अपने को कंपेयर करना दूसरे के साथ सोच, ये जो संकल्प आते हैं ना आपके मन में, ये विकारी हैं, इम्प्योर हैं, हाँ, ये नेगेटिव हैं, ऑर्डिनरी नहीं है, नेगेटिव हैं, ये आपको रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये आप नहीं हो, आप तो शुद्ध सोचने वाली आत्मा हो। आपको यदि आप अपनी पोजीशन लो कि मैं शुद्ध सोचने वाली आत्मा, मेरी ये पोजीशन है, आप अपना हक लो। हम वो हक नहीं लेते हैं, लड़ते रहते हैं इन विचारों के साथ, ये थॉट्स के साथ। तो आप पोजीशन में आ जाएंगे ना, तो थॉट्स भाग जाएंगे। तो आप अपनी पोजीशन पकड़ो कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं तो शुद्ध सोचने वाली एक शक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ना मास्टर सर, वो वाली आत्मा हूँ, वो मेरी पोजीशन है संगम युग पे। हाँ हाँ, ये दे दो और ये ले लो। हाँ, क्योंकि बाप है ना, आपको वर्षा दे रहा है, तो आप वर्षे को नहीं भूलो, वो क्या दे रहा है वो ले लो और ये छोड़ दो। क्योंकि एक चीज रहनी चाहिए ना मन में, एक छोड़नी है एक लेनी है। यदि छोड़ेंगे तो लेंगे क्या, क्या विचार करोगे फिर, आप कौन सा थॉट चलाओगे मन में, है ना। तो वो ले लो और ये छोड़ दो। भैया आपका क्या प्रश्न है भाई साहब? हाँ, टेस्ट होता है 5 मिनट का, पेशेंस। जैसे किसी ना, आपने किसी मेड को कहा ये काम करो, उसने नहीं किया, तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो वो आपका टेस्ट था, बस 5 मिनट का, 2 मिनट का, है ना। चैलेंजेस बड़े हैं, नेचुरल कैलामिटीज चैलेंज है, बर्फ गिर गई, बहुत बड़ा तूफान आ गया, आपका घर चला गया, जैसे फिलीपींस में हुआ ना अभी, जो लांडा आया था, एक ब्राह्मण है आत्मा है, तो वो वहां पर रहते हैं। तो मैं गई थी, उसने गीता पाठशाला खोली अपने घर में, तो उसने तो ऐसा अनुभव सुनाया, हम लोग तो सभी हो गए। उसने कहा कि जब उसको, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये सुनामी की तरह है, इसकी स्पीड बहुत है, कुछ नहीं बताया, ये बताया ये तूफान है। तो फिलीपींस में टाइफून आते रहते हैं, वो लोग यूज्ड हैं, लेकिन इसकी स्पीड 300 से ज्यादा जाने वाली है, और वो ओशन से आ गया ना, समुद्र से, तो वो समुद्र का सारा पानी चला गया ना, सारा शहर खत्म हो गया, तो उसका घर भी पानी। तो वो कहती मैं तो बाबा को याद कर रही थी, अभी बाबा को याद प्रैक्टिकल कर रही थी, तो थॉट भी तो अच्छा आना चाहिए ना, बाबा से कैच नहीं किया, तो उसने कैच नहीं किया बाबा का थॉट, तो वो वहीं बैठी रही। अच्छा, वो वहीं बैठी रही, तो जब पानी आया तो वो उसके घर के पीछे स्लम एरिया समझते हैं, जहां पर जंगल होता है, तो वो उधर जंगल था, तो सारे सांप और जो बेचारे लोग मर के जो बॉडीज थी, डेड बॉडीज, सांप, कहती मैं तो देख के हैरान हो गई, पानी आ गया उनके साथ, कहती मेरे को फिर तैरना पड़ा उनके साथ, डेड बॉडी एंड सांप के साथ तैरी, वो स्विम किया। तो फिर उसका लड़का तीसरे फ्लोर, फटाफट वो जब दूसरे फ्लोर की दीवार के साथ लगी, तो उसके लड़के ने उसका हाथ खींच लिया, तो उसको निकाला उस पानी से, तो फिर वो तीसरे फ्लोर पर ले गया घसीट के, तो वो बच गई। तो मेरे को कहती रजनी, में अब भी मेरे को मुरली समझ आती है।
मैंने कहा ये बापरे तुमको मुरली समझ नहीं आई थी क्या इतने सालों से? कहती अभी बापरे मैं तो अवेक हो गई, अभी मुरली रियल लगती है जो बाबा कहते हैं ना, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, ये होगा वो होगा। कहती अभी जा करके मेरे को ये समझ आया, मैं पहले समझती नहीं थी। मैं कईयों के जीवन में बदलाव इस ढंग से आता है जब वो चुनौतियों से पार करते हैं। तो आंखों के सामने तीन गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी चली गई तैर के, सब गया, घर भी गया, छत गई, ज्वेलरी गई, पैसे गए, कपड़े गए, कुछ भी नहीं रहा, खाना भी नहीं। तो फिर दूसरे दिन वो ना मिलिट्री प्लेन से आए मनेला, तो उसके लड़के ने कहा चलो हम चलें। तो उन्होंने कहा प्लेन वालों ने, आपने यदि एक भी बैग उठाया होगा तो नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं उठाया, तो ऐसे के ऐसे आए। फिर हम लोगों ने उनको कपड़े दिए, पैसे दिए, खाना दिया, जगह दी रहने के लिए, ब्राह्मण है ना, बाबा के बच्चे हैं, तो उनको सेट किया, यू नो। तो फिर अभी हम लोग सोच रहे हैं पैसा बीकेस वो इकट्ठा करके थोड़ा गीता पाठशाला ठीक करेंगे, और वहां सेवा, इतने लोग दुखी हैं, है ना। वैसे तो रिलीफ वर्क चल रहा है, वो स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, यूके वालों ने पैसा भेजा है बीकेस ने, रिलीफ वर्क करो, तो वो स्कूल के बैग्स खरीदे हैं 4000, वो स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, उसमें नोटबुक, पेन, बैग्स ये सब दे रहे हैं ना, जहां पर उनके पास कुछ नहीं है। और कईयों को हम लोग वो दे रहे हैं कपड़ा, खाना, है ना, और मतलब अलग अलग सेवा कर रहे हैं। और जिनको ट्रोमा आ चुका है उनके लिए सिलेबस तैयार किया है, सारे साइकोलॉजिस्ट मिलके, 12 बेस्ट मनोवैज्ञानिक फिलीपींस के मिलके हमारे रिट्रीट सेंटर पे आके ब्रह्मा कुमारी की जो नॉलेज है आध्यात्मिक वो हमको बताओ। तो हम सब मिल करके जिनको इतना ट्रोमा आ गया कि आज मेरा घर था कल कुछ नहीं है, ना भाई बहन बैठा है, ना कमरा है, कहाँ गया है, सब ट्रोमा में है लोग, तो उनके लिए हमने विशेष तैयार किया है कोर्स। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो हमारे बीकेस हैं वो 12 लोग हैं बस, वो जब पढ़े हुए हैं, मास्टर डिग्रीज हैं जिनके पास, क्योंकि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं सारे फिलीपींस के, बेस्ट बेस्ट, बहुत अच्छे, वेरी ब्राइट इंटेलेक्ट, वो लोग हमारे ज्ञान में आकर के ये कह रहे हैं कि अभी हम मिल करके ये करें। तो नेटवर्क चालू किया हुआ है सारे देश के लिए, तो वो सिलेबस तैयार किया अभी जाके। तो तीन प्रकार का कर रहे हैं हम लोग, एक तो जिनके पास कपड़ा नहीं है चलो रिलीफ के लिए दे रहे हैं, और जो ये वाले ट्रोमा वाले उनके लिए तैयार किया सिलेबस सारा जाके, वो पत्नी कितनी मीटिंग्स में डिटेल में जाकर क्या प्रश्न पूछना है, कैसे उसके मन को निकालना है उस डिप्रेशन से, क्या क्वेश्चन होना चाहिए कैसा, वो कहते हैं बीकेस कर सकते हैं ये काम, तो इसलिए हम मिल करके करें। तो नेटवर्क चल रहा है सारा टोटल, बहुत जबरदस्त, वो बहुत अच्छा कोर्स है ना, उसको कहते हैं कि फिजिकल फिजियो सोशल स्पिरिचुअल कोर्स, जो ट्रोमा के लिए है, ट्रोमा के लिए। और हम लोग हो सकता है वो लोग अलाउ करेंगे हमको तो हम और देशों को भी दे सकते हैं, अभी तो उन्होंने फिलीपींस के लिए तैयार किया है बीकेस और लौकिक प्रोफेशनल लोगों ने। और रिलीफ वर्क 14 फरवरी बाबा का दिन, पहली बार हमने मेयर के थ्रू जाते हैं ना, लोकल जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू पेपर वर्क करके दे रहे हैं बैग स्कूलों के, फिर दूसरे जा रहे हैं मार्च में, हजारों बैग तैयार कर रहे हैं बीकेस, तो जाके उनको बांटने हैं सभी को। और वो है हमारे फिलीपींस में एक बहन है शहानी, वो सेनेटर रह चुकी है, एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कानून लिखे हैं अपने देश के लिए, तो वो प्रेसिडेंट है हमारी ब्रह्मा कुमारी के, उसके नाम से बहुत काम होते हैं तो वो ही बहुत काम करती है। बाबा देखो किसी किसी, और उसने पता है दादी जानकी से इतनी पालना ली हुई है, फोन से वो ब्राह्मण बन गई दादी ने उसको बहुत प्यार दिया हुआ है, तो वो प्यार उसको खींच खींच के लाता है, तो ब्राह्मण है, रोज क्लास करती है और अच्छी पोजीशन है, तो सेवा करते हैं ना, फिर बाबा तो जानी जानन हार, उसको तो पता है किसको टच करके यहाँ लाना है तो इस प्रकार से ये भी सेवा चलती है। तो मैं क्या बता रही थी कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, और कई बार हम जागते हैं चुनौतियों से। वो जैसे बहन ने मेरे को जब कहा ना, कहती है रश्मि बहन मैं तो हैरान हो गई, क्या हुआ मेरे जीवन के साथ, क्योंकि बड़ी दूसरी दुनिया में रहने वाली है तो ब्राह्मण, लेकिन कोई ब्राह्मण वो होते हैं ना दूसरे हवा खाने वाले, मतलब मालूम नहीं बाबा मुरली में क्या कह रहे, तैयारी नहीं थी ना अंदर की। तो कहती मैं तो बहुत शौक में चली गई कि मैं कहाँ हूँ, है कुछ नहीं रहा है। तो अभी बाबा की मुरली रियल लगती है, रियल मीन्स जो बाबा कह रहा है वो हाँ हो रहा है, सच है, और हमारे भी जीवन में आ सकता है कभी भी। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है। तो अच्छा हुआ आप सबको मिलके, और बहुत ही खुशी हुई आपको मिलकर के। तो आप लोग तो बहुत ही पावरफुल हो, हिंदी क्लास अच्छा है अपना रखना। रोज नया टीचर मिलेगा आपको। खींच के कल रात को खींचा। हाँ, फिर सुदेश दीदी आ जाएगी आपके पास। हाँ, आपके पास आ जाएगी सुदेश। हाँ, उसने कल मेरे को ऐसा पकड़ा, आपको कराना ही है, आपको कराना ही, और कोई चॉइस नहीं दी। हाँ, चारू बहन का ताली लगाओ, इसने मेरे को पकड़ के लाई। नहीं हाँ, मैं इसलिए तो इसको रखा है। आई थी। हाँ, चलो अच्छा है। तो आप तीन बातें अभी सारी क्लास में से जो भी आपको अच्छा लगा है थोड़ा आप इमर्ज करना अपने मन में इस योग में, है ना, एक्सरसाइज होती है ना, जो भी सुना अभी अभी उसको इमर्ज कर लो, कोई भी पॉइंट को, है ना, रिवाइज करना अभी तीन बातें। भैया गीत नहीं चलाना, भले हम रिवाइज कर रहे हैं, बस साइलेंस में।